ग्राम शून्य। अगला ग्रुप चार, सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? सहज की निशानी क्या है? मेहनत नहीं होगी, स्वतः होगा, मेहनत नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। बाबा ने जैसे ज्ञान और योग में रेगुलर और पंक्चुअल हो, वैसे सहज और निरंतर योगी बनने में सहज रेगुलर और पंक्चुअल हो।
जैसे शरीर का श्वास,
जैसे शरीर का श्वास सहज है। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगा, निरंतर होगा। जो सहज है वह सदा होगा, सदा होगा, निरंतर होगा। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते। जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी ऐसे नहीं। योगी जीवन है ही, योगी जीवन है तो जीवन सदा होती है। इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन सहज योगी हो, कर्म योगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। अगर सोए भी तो सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे अनुभव करते हो या योग टूटता है फिर लगाना पड़ता है, फिर कभी लगता है कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है। योग का सहज अर्थ ही है, क्या अर्थ है योग का?
मिलन की अनुभूति।
मिलन की अनुभूति, योग अर्थात जोड़ना, यूनियन, योग, योग अर्थात यहाँ बाबा ने कहा याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है। तो सबसे प्यारे से प्यारा कौन? किसी ने कहा बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगी ना। अगर कहां भी, चाहे देह में, देह के संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब कौन है? सहज योगी है। सहज योगी है तो योग सहज हो, स्वतः हो, निरंतर हो, मुश्किल ना हो, मेहनत ना हो, कभी साधारण कभी योगी ऐसे ना हो। और हम केवल योगी नहीं है, कर्म योगी। तो कर्म योगी अर्थात हर कर्म में योग। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, अगर सोए हो तो भी सोने का काम तो कर रहे हो। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे अनुभव करते हो या योग टूटता है फिर लगता है, फिर कभी लगता कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं हो। योग का सहज अर्थ ही है याद, निरंतर एक की याद में रहना। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है ना। तो सबसे प्यारे थे प्यारा कौन? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगी। अगर कहां भी, देह में, देह के संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले वो याद आएगा। देह देह के संबंध, और तीसरा पदार्थ,
पदार्थ
पदार्थ साधन वस्तु विषय वस्तु जो भी आकर्षण करने वाले पदार्थ है वो सारे आ गए उसमें। तो अगर इन तीनों में से किसी से भी प्यार है तो पहले वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे? हाँ, एकदम छोड़ेंगे तो बहुत याद आएगा, फिर वो बंदर की तरह हो जाएगा, चलते फिरते जहां देखो बंदर, स्नान कर रहा है तो बंदर, उठता है तो बंदर, स्वप्न में बंदर। कहा था बंदर को याद मत करना, बस वही याद आ रहा है। तुरंत अगर छोड़ दिया वो भी बहुत अच्छी बात है, परंतु वो फिर दमन हो जाएगा वहां पर। दमित भावनाएं, दमित इच्छाएं, दमित आकांक्षाएं सब उभर कर बाहर फिर आएगी। त्याग जो है वो कोई क्रिया नहीं है, जैसे भोग भी कोई क्रिया नहीं है। भोग किसी चीज की परिणति है, परिणाम है किसी चीज का। अज्ञान का सहज परिणाम भोग है। अज्ञान है करके भोग कर रहे हैं, और जब पता चल जाए, किसी अमूल्य वस्तु का पता चल जाए, तो जो निर्मूल्य है, जो अर्थहीन है, उसका त्याग स्वतः ही हो जाएगा। वो करने की जरूरत नहीं है निर्मूल्य का त्याग। अमूल्य हाथ में आ गया तो निर्मूल्य स्वतः ही छूट जाता है। त्याग कोई क्रिया भी नहीं है। जब महत्व पता चल जाए किसी चीज का, तो जो महत्वहीन है वो स्वतः ही छूट जाएगा। तो अपने मन को अगर कोई चीज पता तो चले कि पता चल गई कि ये छोड़नी है, उसको तुरंत ना छोड़ के थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करना है। उसके नुकसान क्या क्या है, उसके फायदे कुछ है अगर हो, उसके ऊपर भी चिंतन करो। उसके फायदे और इसके फायदे, जो प्राप्त हो रहा है उसके क्या फायदे हैं। तो ज्ञान की सहज परिणति त्याग है। जहां ज्ञान आ गया वो त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वतः ही छूट जाएगी वो चीज। त्याग कोई क्रिया है ही नहीं, स्वतः ही छूट जाएगा वो। उसको हम रख ही नहीं सकते क्योंकि वो अंधकार है। क्योंकि प्रकाश आ गया तो अंधकार कैसे रहेगा? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर। और भोग है तो उसका मूल कारण अज्ञान है। काम अज्ञान के ऊपर करना है, ना कि भोग के ऊपर। भोग को छोड़ने का प्रयत्न किया तो वह दब जाएगा। 3 दिन उपवास करो और 4थे दिन इतना खाओ इतना खाओ इतना खाओ कि बात मत पूछो। 1 दिन उपवास करो और 2रे दिन पूरा क्या खाओ और क्या नहीं, क्योंकि दमन किया था। विषय संसार के जो भी पदार्थ है जिसमें रस उत्पन्न होता है, इंद्रियों को जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, भोजन, जो भी इंद्रिय है, आंख, आंख में से दिखने वाली जो मनोहर वस्तु है, नैनाभिराम वस्तु है जो संसार की है, वो कुछ वस्तुएं देखने में बहुत अच्छा लगती, वो इंद्रिय आंखों का सुख है। कुछ वस्तुएं सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वो भी एक सुखी है। किसी वस्तु को हाथ लगाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी का सुगंध बहुत अच्छा लगता है, ये सब विषय वस्तु है जिससे इंद्रिया चलायमान होती है, जिससे इंद्रियों की एकाग्रता नष्ट होती है, जिससे इंद्रियों में हलचल उत्पन्न होती है। लक्ष्य है अचल बनने का, यहाँ चांचल्य उत्पन्न हो रहा है, उसको हिला रहा है इंद्रियों को। हमें प्राप्त करना है वह सुख जिसका इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है, वह सुख जो आंखों के बिना प्राप्त हो सकता है, वह सुख जिसके में कान की आवश्यकता नहीं, नाक की आवश्यकता नहीं, मुंह की आवश्यकता नहीं, ना इस चमड़ी की आवश्यकता है। ऐसा ये 5ों ही इंद्रियों के ऊपर का जो सुख है वह है अति इंद्रिय सुख, उस सुख के लिए इन सुखों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, हम कर कह रहे हैं हो रहा है पर नहीं है, क्योंकि आत्मा रसों में लिप्त है। यह रसों में लिप्त जब तक आत्मा है तब तक वो सुख एक दूर का स्वप्न मात्र है, केवल वेशभूषा परिवर्तन हुआ है, बाकी वो जो इच्छाएं हैं, इन भोग विलास की इच्छा, ये जब तक है तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। बाबा फिर चाहे जो भी कहे, बाबा कहते हट योग तुमको करना नहीं है, तुमको ये नहीं करना, ये तो सहज योग है, परंतु बाबा ने जब ये कहा है तो बाबा ने और भी बहुत सारी चीजें भी कही है, दोनों चीजें कही है उसने। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक इन इंद्रियों के सुखों से वैराग नहीं होगा, त्याग, वो भी कोई क्रिया नहीं, ज्ञान के आधार से इतना ज्ञान बढ़ जाए कि वो तुच्छ लगने लगे। तो खाना तो मजा किसमें है फिर? तो इसका मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को किसी स्त्री से बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है कि उसको उसकी हर चीज अच्छी लगती है, उसका चलना, उसका फिरना, उसका घूमना, उसका बैठना, पर वो जो स्त्री है वो जिस घर में रहती है उसी का भाई, उसको उसकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो इसका ये जो प्रेम है, या प्रेम कहो या जो भी कहो, वो कितना सत्य है कि उसको उसकी हर चीज ही अच्छी लगती है, क्या वो केवल भ्रम तो नहीं है? वो भ्रम ही है, एक आसक्ति है जिसे वो प्रेम की संज्ञा दे रहा है, पर वास्तव में वो उसी का भाई है जो उसी के साथ रहता है, उसको तो उसका 5 मिनट भी उसके साथ नहीं रह सकता है, इतना दोनों में विरोध है, संस्कारों में इतना विरोध है। एक को वो अति सुंदर लग रही है, एक को अति कुरूप, एक को उसकी हर चीज में सौंदर्य है, एक को असुंदर है। तो ये केवल भ्रम मात्र है, हमारी जो आसक्तियां है वो भ्रम मात्र है। अगर गुलाब जामुन में सही में इतनी अच्छी चीज है तो जो बीमार व्यक्ति है उसे क्यों उसे खाने की इच्छा नहीं होती है? उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। पीलिया का कोई पेशेंट है, उसको तो देखना भी अच्छा नहीं लगता, चाहे अच्छे से अच्छा भोजन सामने रख दो। तो वास्तव में वो बहुत अच्छा है, या ये भी हमारी भ्रांति है कि वो बहुत टेस्टी है? टेस्ट कहाँ है, वास्तव में वो उसमें है। एक गुलाब का फूल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर किसी को नफरत है उस गुलाब के फूल से, जैसे वो देखता है कुछ यादें जुड़ी हुई है उसके जीवन की। बहुत बार किसी ने उसके प्यार को ठुकराया था, वो धोखा दिया था, वो देखना नहीं चाहता, और मुझे बहुत प्रिय लगता है, मैं कहता हूँ तुम लो, वो फेंक देता है। तो सुंदर वो गुलाब का फूल है या कुछ और, टेस्टी वो चीज है खाने की या कुछ और, त्याग किसे कहेंगे? त्याग, एक व्यक्ति था कि जो ये समझता था मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे बहुत धन चाहिए, इतना धन इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया, फिर पता चला धन धन की व्यर्थता का पता चला, ये तो एकदम ही व्यर्थ है, पर जो चीज मेरे लिए व्यर्थ है चाहे किसी और के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर वो इतना धन उसके पास हो जाता है, इतना धन हो जाता है, किसी धनवान, एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, वो सोचता है कि मुझे इस माया से मुक्त होना ही है, तो अपना सारा धन लेके जाता है जहाज से, बीच समुन्द्र में सारा के सारा डुबो देता है, और जब वापस आता है तो लोग उससे कहते हैं अरे हमको बताना था ना, भले आपके लिए व्यर्थ था पर हमारे लिए तो व्यर्थ नहीं था वो। तो वो कहता है जो चीज मेरे लिए व्यर्थ थी, मैं नहीं चाहता कि मैं निमित्त बनूं किसी और को उस व्यर्थ का उपभोग करने की। अगर मैं त्याग करता, वो ये भी कर सकता था त्याग कर दे, मतलब धन बांट दे, तो उसमें भी माया है, फिर नाम भी हो जाता है ना सब जगह, इसने बहुत बड़ा त्याग किया, तो वो एक अलग प्रकार की माया वहां उत्पन्न होती है, वो दे मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, इसके लिए डुबो दिया, बस त्याग को ही डुबो दिया। तो इसको बहुत बहुत समझ समझने की बात है कि जो भी चीज हमको पता चले कि इसे छोड़ना है या ये कमजोरी है, जो भी है, ये एक आसक्ति है जिसका हमारे जीवन में, इस आसक्ति के वजह से योग में उन्नति नहीं हो रही है, अब इसे कैसे छोड़ा जाए। तो वहां पर उसके विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है कि क्या है ये, इसे मैं रखूं तो क्या फायदा है, इसे मैं न रखूं तो क्या होगा, क्यों छोड़ू इसे। जबरदस्ती अगर छोड़ दिया, जस्ट मुरली में आ गया एक दिन, जैसे अभी कल की मुरली में था ना, तुमको 2 बजे उठना है, कल परसों था ना अगर कोई आ जाए और चालू कर दे ऐसा, बिना उसको समझे, बिना अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाए, तो उसके शरीर पर भी भारी पड़ जाएगा वो। उसको अगर सहज समझकर धीरे 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 अगर किया जाए तो हो सकता है। अरे अभी एक ही दिन में कर दिया तो 3 दिन 2 बजे और चौथे दिन सीधा 8 बजे, अगर कहां भी, चाहे देह में, देह के संबंध में कोई ऐसा एक संबंध है जो आत्मा को कमजोर किए हुए है, चलो उस संबंध से विकार की उत्पत्ति तो नहीं है, परंतु वो उसका कमजोरी है, उस संबंध को भी छोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। कोई बताएगा नहीं छोड़ो, खुद ही सोचना पड़ेगा। पदार्थ में प्यार होगा, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी पदार्थ इस संसार का, कोई भी हो सकता है फिर, कोई भी सुख के कोई भी साधन हो सकता है, वो साधन आज है, अगर वो कल हटा दिया जाए तो हम कहाँ हैं। तो बाप के बदले वही याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं तो समझो योग युक्त नहीं। अगर साधारण कर्म होता है, व्यर्थ कर्म होता है, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। तो सहज योगी अर्थात कर्मयोगी और कर्मयोगी अर्थात सहज योगी। तो चेक करो कि सारे दिन में कोई साधारण कर्म तो नहीं होता। श्रेष्ठ हुआ, श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति और खुशी, नशा, दुआएं, हल्कापन, डबल लाइट स्थिति, कोई भारीपन नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कर्म करने के बाद उसका कोई पश्चाताप नहीं है, उसका कोई बहुत चिंतन नहीं है, इतना सहज उसको कर दिया। उसका कोई अहंकार भी नहीं है, वहां निमित्त भाव था तो कोई अहंकार भी नहीं। तो यहाँ बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो हमें क्या। योगी जीवन वालों का प्रभाव स्वतः दूसरे के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है वह और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। जो सभी संतुष्ट, तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करते हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सभी संतुष्ट हैं या कोई संतुष्ट कोई असंतुष्ट। अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हैं। कभी होता है या संपूर्ण हो गए। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान उपलब्ध साधन है, जो वर्तमान उपलब्ध परिस्थितियां है, जहां भी हम हैं, उन सब से संतुष्ट। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। और सबसे बड़ी संतुष्टता कौन सी है संसार की? लौकिक में भी देखा जाए, इस संसार की कोई भी वस्तु हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा अनंत है, उसको अंत ही अंत आदि अंत वाली चीजें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, वो इनफाइनाइट है, उसे फाइनाइट कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। बेहद को कभी हद की कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर, उसे बेहद ही संतुष्ट करेगा। परमात्मा के अतिरिक्त कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे एक दिखाया, एक सम्राट था, बहुत ही दानवीर सम्राट था, इतना बड़ा सम्राट था कि रोज सुबह जो भी याचक पहली बार उसके प्रथम आता था, वो उसे जो चाहे वो दे देता था। एक दिन सुबह सुबह एक फकीर आया, उसने उससे कहा कि तुमको जो चाहिए वो मांग लो। तो वो फकीर, वो याचक अपना भिक्षा का पात्र सामने करता है और कहता है, मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। राजा को लगता है कि केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं? वो कहता है, तुमने अगर आज कुछ भी मांगा होता तो मैं दे दिया होता। वो कहता है, बस इतना ही दे दो। तो राजा स्वर्ण मुद्राएं डालना चालू करता है, पर वो पात्र ऐसा अद्भुत कि भरता ही नहीं। वो डालने लगता है, डालते रहता है, डालते रहता है, डालते रहता है, पर वो भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, वो और ही खाली होते रहता है। राजा बड़ा दुखी। फकीर उसको कहता है कि अगर तुम नहीं भर सकते हो तो ऐसे बोल दो, अगर तुमसे नहीं होता है तो बोल दो, मैं कह दूंगा दुनिया वालों को कि राजा ने अपना वचन पूरा नहीं किया। तो ये जब सुनता है तो राजा को लगता है, अरे ऐसा कैसा, सारा खजाना ले आता है अपने, जितना खजाना होगा सारा के सारा की खजाना डाल देता है, फिर भी पात्र भरता ही नहीं, पात्र खाली के खाली। वो उसके चरणों में गिर कर कहता है कि हे महात्मन, मुझे बताइए कृपया, ये कौन सा अद्भुत पात्र है कि ये जो, ये तो कोई जादू ही पात्र है, ये तो कभी भरता ही नहीं, किस चीज का बना हुआ है ये, क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ये भरता ही नहीं है। तो कहते हैं, राजन ये पात्र मनुष्य के हृदय से बना हुआ है, संसार की कोई भी धन इसे भर नहीं सकता, संसार का कोई भी पद इसे भर नहीं सकता, संसार का कोई भी ज्ञान, उपलब्ध सूचनाएं जो कि ज्ञान है संसार में, वो इसे भर नहीं सकता, परमात्मा ही इस हृदय को भर सकता है। जब तक वो परमात्मा वहां नहीं आ जाए, उसका प्यार वहां ना उत्पन्न हो, तब तक ये पात्र अधूरा ही रहेगा। तो हमारा हृदय ऐसा है कि संसार की कोई भी चीज, कितने भी साधन, कितने भी सब कुछ मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, संतुष्ट नहीं हो सकती आत्मा। वो संतुष्ट तो केवल परमात्मा प्रेम में खोकर ही हो सकती है। वो योग की उसे दिव्य अनुभूति जब तक नहीं होती, जिसमें वो देह से अलग हो जाए, देह को संतुष्ट करने वाली जो भी चीजें है, वो उसे कल बहुत बढ़िया खाना खाया, 3 बार सुबह खाया, दोपहर को खाया और शाम रात को तो पूछो मत, आज फिर वही वासना है, फिर वही तृप्ति, फिर वही याद, फिर वही अपूर्णता, वो भोजन कहाँ गया? कल बहुत संतुष्ट हो गए थे, पर कितनी अल्पकालीन संतुष्टता थी कि जिसका आज नाम निशान नहीं है, आज तो कुछ और बढ़ गई कल वो बनाए तो आज तो और चाहिए कुछ नया और दूसरी वैरायटी कुछ। कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो हम फंस रहे हैं उसमें, रसों में लिप्त हो रही है आत्मा, जितना उसमें फंसेगी। हमारा लक्ष्य है मुक्ति, यह है बंधन, सभी बंधन है ये संसार में जो कुछ दृश्यमान है। बार बार स्वयं को याद दिलाना है, मुझे मुक्त होना है, बंधना नहीं है। अब तक जो बंधन है वो बहुत है, अभी नए बंधन मत क्रिएट करो। अब तक जितने संबंध है वो बहुत है, अभी नए फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना। जैसे गृहस्थियों को बाबा कहते ना, गृहस्थ बन गए, युगल, बच्चे, ये इतना भी ठीक है, अभी आ जाओ, अभी और नए नए पूछ, अभी नए नए बंधन मत तैयार करो, और भी नए नए बंधन, नए बंधन, जितनी ज्यादा हमारी पहचान लोगों से उतने ज्यादा बंधन, घनिष्ठता फैमिलियरिटी जितनी ज्यादा उतने बंधन। बंधनों को कम करना है ना कि बढ़ाना है, इच्छाओं को कम करना है ना कि बढ़ाना, वासनाओं को कम करना है ना कि बढ़ाना, भोग इच्छा, क्योंकि ये इंद्रिय ऐसा है कि जितना भोगेगी उतना और रस उसमें आता है। ऐसा नहीं कि आज ये कर लूं तो बस ये लास्ट है मेरा, इसके बाद तो नहीं, आज जितना लेना है ले लेता हूं, आज इतना लिया ना, कल और ज्यादा लेने की इच्छा होगी। छाए दुष्पूर है, कभी पूर्ण ना होने वाली। तो बाबा यहाँ संतुष्टता की बात करें, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। संतुष्ट सततम योगी, गीता में लिखा है योगी का लक्ष्य है कि वो सतत संतुष्ट रहता है। तो अपने साथियों से पूछे, तो आपके साथियों से पूछे कि संतुष्ट है या नहीं है, वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे, वो बताएंगे। क्योंकि योगी जीवन के तीन सर्टिफिकेट है, एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे योगी जीवन का प्रभाव होता है। एयर कंडीशन चालू करो तो दिखता नहीं है कुछ क्या हुआ हवा में, परंतु महसूस तो होती है ठंड। इसको कहा जाता है, ऐसा प्रभाव है योग माना साइलेंस की शक्ति। इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन। तो ऐसे हैं कि हाँ हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे, परिवर्तन की के पहले कौन सी क्रिया है, चेकिंग की, स्वनिरीक्षण, स्व को देखना, साक्षी होकर देखना, केवल स्व को देखते रहना, स्व की चेकिंग करते रहना, कहाँ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, चेकिंग भी सूक्ष्म, चेकिंग की चेकिंग। तो क्या सुना, एक तो सहज योग, कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ऐसे सहज योग के लिए उतना ही परमात्मा प्रेम हृदय में चाहिए तो वो सहज होगा। जैसे पक्षी कितना सहज गा रहे, कोई मेहनत कर रहे है क्या, सूरज कितना सहजता से उगते, नदियां कैसी सहज बहती है, कितना सहज झरने कलकल निनाद करते, कितना सहज सब कुछ है उनका, वर्षा कैसे गिरती है सहज, कवि कितना सहज लिखता है, वैसी सहज वो सब बातें। जबरदस्ती अगर किसी को कहे कविता लिखो तो वो कविता आर्टिफिशियल होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो बनाई हुई होती है। अभी कल प्रोग्राम है भाई, लोग आने वाले हैं, स्वागत गीत बनाओ, स्वागत गीत बनाया, पर वो कृत्रिम है, उसका अविनाशी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो बनाया हुआ है। कविता या गीत कभी बनाए जाते हैं क्या, वो तो हृदय से स्वतः निकलते हैं। जो फिल्मों के पुराने गीत है वो लोगों को आज तक याद है, क्यों, क्योंकि वो उसमें भी थोड़ी सत्व प्रधानता थी। या यज्ञ के ही गीत ले लो, यज्ञ के जो पहले के जो गीत है, कितना उसमें दर्द है, उसमें कोई संगीत नहीं है खास, आवाज भी ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर उस आवाज में दर्द है, उस आवाज में एक प्रेम है, उस आवाज, वो एक ऐसा आवाज है कि वो सुनने के बाद ऐसा लगता है इसको गुनगुनाओ, ऐसा लगता है और चले थोड़ा देर ये गीत। और अभी के जो गीत है उसमें बहुत ही म्यूजिक है, हल्ला गुल्ला बहुत है उसमें, वो सुनने को बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसका जो अनुभव है वो इतना नहीं होता है, क्योंकि जो लिख रहा है उस व्यक्ति की स्थिति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, किस स्थिति में गीत लिखा गया है। अगर परमात्मा प्रेम में डूबो कर लिखा गया है तो वो सुनने वालों को डुबो देगा उसी प्रेम में जिसमें वो लिखा गया था। तो योग भी ऐसा ही है, सहज हो, हर चीज में सहजता तो वो है, नहीं तो उसको खींचा था जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बनाई है दिनचर्या, तो वो टूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं सहज योग, और किसी में भी आसक्ति ना हो, ना देह में, देह के पदार्थ में, देह के संबंध में और पदार्थ में, और लास्ट में संतुष्ट, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, वो भी जबरदस्ती नहीं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, फिर बाबा ने कहा संतुष्ट रहना है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ और अंदर से बहुत इच्छा है ये करूँ वो करूँ, मैं संतुष्ट आत्मा, फिर दबाया उसको रूपांतरण, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, दिव्यीकरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, सब उसको प्यूरिफिकेशन करना है। हाँ, वो इस तरह का रूपांतरण चाहिए। दबाया तो वो बहुत ही घातक है, दबाना वो निकलेगा एक दिन, 10 साल के बाद निकल सकता, कभी भी निकलेगा, ऐसा निकलेगा सुनामी की तरह कि तुम्हारे ज्ञान योग के छोटे छोटे गांव और नदी वो सारे बह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सहजता के लिए ज्ञान को बढ़ाना है।